نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد شریعت مطہرہ کو سیکھنے کا اہتمام کرو. شریعت مطہرہ کیا جائز ہے, کیا ناجائز ہے, کیا فرض ہے, کیا واجب ہے. شریعت ایک قانون ہے, قانون اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا, تو اس کو سیکھنے کی کوشش کرو. علماء کی مجلسوں میں بیٹھو, دروس میں بیٹھو, مشائخ کے پاس جاؤ, چاہے ہفتے میں ایک مرتبہ لیکن ضرور جاؤ, اور پھر شریعت مطہرہ کے قوانین کو عملی شکل دو, پریکٹس کرو اس کے اوپر, پریکٹیکلی اس کو جگہ دو اپنی زندگیوں میں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں ابتلاء عام ہوتا ہے. ابتلاء عام کا مطلب یہ کہ بہت بڑی تعداد اس کام میں ملوث ہو جاتی ہے, تو پھر آہستہ 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 لوگوں کے ذہنوں سے اس گناہ کی سنگینی ختم ہو جاتی ہے. جیسے ٹیلی ویژن, تو گھروں میں ٹیلی ویژن ہوتا ہے, تو چونکہ اکثر گھروں میں ٹی وی ہے, تو آپ جب کسی کے گھر جاتے ہیں اور ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں, تو جو اعلی درجے کا دیندار ہوگا اس کے دل پر بھی چوٹ محسوس نہیں ہوگی. ٹیلی ویژن پر نظر پڑتی ہے تو چوٹ محسوس نہیں ہوتی. بھائی گھروں میں ٹیلی ویژن کیوں رکھے جاتے ہیں؟ فلم وغیرہ دیکھنے کے لیے, کوئی نہ کوئی تو فلم دیکھتا ہوگا, تو یہ چوٹ نہیں لگتی ہمیں. اسی طرح جو ہے ہمارے گھروں میں بے پردگی, تو چونکہ ہر گھر میں بے پردگی ہے, میرے گھر میں بے پردگی ہے, محمود بھائی کے گھر میں بے پردگی ہے, فرض بھائی کے گھر میں بے پردگی ہے, مفتی صاحب کے گھر میں بے پردگی ہے, اسلم بھائی کے گھر میں بے پردگی ہے, ایک مثال نام کے طور پر, تو ہر گھر میں بے پردگی ہے. تو یہ بے پردگی کا گناہ. اب شراب جو ہے, شراب میرے گھر میں بھی شراب نہیں آتی, اسلم بھائی کے گھر میں بھی نہیں آتی, افراز بھائی کے گھر میں بھی نہیں آتی, محمود بھائی کے گھر میں بھی نہیں آتی, تو کسی جگہ شراب ہمیں راستے میں چلتے چلتے بھی صرف بوتل نظر آ جاتا ہے تو ہم یوں چہرہ ہٹا لیتے, دیکھنے کو بھی جی نہیں چاہتا. تو شراب پینا جس طرح گناہ کبیرہ ہے, بے پردگی کرنا بھی اسی طرح گناہ کبیرہ ہے. لیکن دونوں گناہوں سے نفرت میں کتنا فرق ہے؟ ایک سے بہت نفرت, ایک سے نفرت ہی نہیں. تو یہ بے پردگی عام تقریباً ہر گھر میں. اور پھر یہ کہ یہ جو اس وقت بات کی جا رہی ہے کہ بڑی عمر کے مرد جب گھر میں آتے ہیں, 70 سال کے, 65 سال کے, 80 سال کے, تو ان کے پاس بھیج دیتے ہیں اپنی بچیوں کو کہ جاؤ دادا کو مل کر آؤ, داؤ چاچا کو مل کر آؤ, نانا کو مل کر آؤ. اور ایسا سمجھتے ہیں کہ تو آپ بوڑھے ہو گئے ہیں. تو ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ ایک حد تک جب عمر پہنچ جاتی ہے مرد کی, ایک حد تک عمر, تو اس کے بعد اس میں زنا کرنے کی طاقت اور صلاحیت نہیں رہتی. لیکن بد نظری کی صلاحیت روح نکلنے تک رہتی ہے. اس میں لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے. وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ چونکہ اب یہ 70, 80, 90 سال کے بوڑھے ہو گئے, تو 70, 80, 90 سال کے بوڑھے ہو گئے تو وہ میاں بیوی کے تعلقات والا تو مسئلہ ان میں رہا نہیں, تو بد نظری کی ان میں عادت ہوتی ہے. اور بد نظری کی عادت ان میں ہوتی ہے, تو بد نظری اسی وقت ہوگی جب اندر شہوت ہوگی. تو شہوت ہوگی تو بد نظری کرے گا, تو اس میں زنا کرنے کی قدرت نہیں ہوگی, لیکن شہوت کے ساتھ ہاتھ لگانے کی اس میں صلاحیت ہوتی ہے. شہوت کے ساتھ وہ ہاتھ لگائے گا. अब वो 4-5 साल की लड़की अगर है और उसने अगर 4-5 साल की लड़की पर नजर खराब की, वो ना महरम है, बूढ़ा है, और उसने उस पर नजर खराब की और वो उसे गले लगाएगा, आपके प्यार कर रहा है, जिसे हम छोटे बच्चों का प्यार करते हैं, जैसे सगी ग्रैंड डॉटर होती है, मैं जरा खुलकर इसलिए बात कर रहा हूं, हया की बात है, मुझे भी शर्म आ रही है, लेकिन लोगों की इज्जतें बचाने के लिए मैं ये खुलकर कह रहा हूं आज, इसमें भी मैंने खुलकर नहीं कहा है, इस बयान में भी। हाथ पकड़ते हैं, खेलते हैं उसके साथ, गाल खींचते हैं, गले लगाते हैं, बोसा देते हैं गाल पर, बड़े मियां हैं, नाना की जगह पर, दादा की जगह पर, ये सब कुछ करना जो है ना वो शहवत वाला होता है। आप अपने 4-5 साल की बच्ची को, नवासी को, पोती को क्यों इस तरह खतरे में डालते हैं? जीना नहीं कर सकेगा लेकिन बाकी सब कुछ कर सकता है वो, शहवत वाली नजर, शहवत वाला हाथ लगाना। तो ये जो प्यार जो होता है वो शफकत वाला नहीं होता। बाप जो अपने बाप अपनी 7-8-9-10 साल की बेटी को भी गले लगा लेता है ना, वो शफकत वाला प्यार होता है, शहवत वाला नहीं। इसी तरह नाना, इसी तरह दादा, इल्ला ये के बाप जो है वो शकीउल कल्ब हो, दादा नाना शकीउल कल्ब हो, वो मामला अलग है। इसलिए बचपन से अपनी बच्चियों की हिफाजत करो, और जमाना खराब है, अपने बच्चों की भी हिफाजत, लड़कों की भी हिफाजत करो, लड़कों को लड़कियों की हिफाजत करो। अल्लाह ताला शानू हमें इसकी तौफीक दे। तो एक आम है हमारे मुआशरे में, एक आम है कि भाई बूढ़ी औरत है तो कोई हरज नहीं, बूढ़ा मर्द है तो कोई हरज नहीं। तो औरत अगर बूढ़ी है तो उसके बारे में तो फुकाहा ने कुछ ना कुछ गुंजाइश लिखी है कि बहुत बूढ़ी है, उसमें वो कशिश अब नहीं रही है, उसको देखने से कोई शहवत नहीं भड़कती। तो अगर 20-25 साल का जवान आदमी भी उससे खाला क्या हाल है, दादी क्या हाल है, तो उसकी कुछ गुंजाइश है, वो मुफ्तियों से आप पूछें। मेरी बात को सुनकर के आप अमल न करें, वो आप अपने लिए मुफ्तियों से पूछें, ताकि मुफ्ती आपको भी देखें और वो दादी को भी देखें और फिर फैसला करें कि किस दादी के बारे में पूछ रहे हैं आप। समझे, मैंने फतवा नहीं दिया है उसमें, ये इसमें अलग है, मगर समझे, यानी दादी नानी के मामले में और दादा नानी दादी के, ये अलग है, ये पराया पराया है। चाहे मैं किसी को चाचा कहूं तो वो चाचा हो जाएगा, मैं किसी को मामू कहूं तो वो मामू हो जाएगा। और ये पर्दे की जो पूरी जो पर्दे की है ना, देखो यहां पर भी जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट, सारे कानून होते हैं। तो ये शरीयत मुतहरा का जो पर्दा है ना, पर्दा वो किसी पर सख्ती नहीं है, ये प्रोटेक्शन एक्ट है। पर्दा जो है ये प्रोटेक्शन एक्ट है, और ये प्रोटेक्शन एक्ट 1400 साल पहले अल्लाह ने नाजिल किया था। और इस प्रोटेक्शन एक्ट पर अगर अमल करे तो कोई खतरे में ना पड़े। ये ऐसा एक प्रोटेक्शन एक्ट है, विमेन और चिल्ड्रन और मेन प्रोटेक्शन भी इसमें, हमारे भी गुनाह से जन्म से हिफाजत हो जाती है। ये ऐसा प्रोटेक्शन एक्ट है कि ऑल एनकम्पासिंग है, हर एक की हिफाजत हो जाती है। और इस प्रोटेक्शन एक्ट के वजूद में आ जाने के बाद फिर हुकूमत का किसी भी प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए कि वो खतरा ही नहीं रहता। जड़ से ही शरीयत, जड़ ही से उखाड़कर फेंक देती है खतरे को। जब जड़ से उखेड़कर आप फेंक देंगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसकी भी। भाई मेरी बात समझ में आ रही है? औरतें निकाब पहन करके, औरतें निकाब पहनकर, औरतें, अल्लाह ताला शानहु ने मर्दों के चेहरों में वो कशिश नहीं रखी जो औरतों के चेहरों में है। औरतें बदनजरी बहुत कम करती हैं, मर्द बहुत ज्यादा करते हैं, इसीलिए दोनों के लिए कानून अलग है। औरतों के लिए कहा गया कि अगर फितने में पड़ने का अंदेशा न हो, गुनाह का अंदेशा न हो, तो औरत मर्द को देख सकती है। और जो औरतें घरों में सुन रही हैं, अपने बारे में मुफ्ती से पूछ करके काम करें। किसी को लाइसेंस नहीं दे रहा हूं, गुनाह के मामले में बहुत एहतियात। लेकिन मर्दों के लिए कोई कंडीशन नहीं, मर्द नामहरम औरत को नहीं देख सकता, बस खत्म हो गई बात। क्यों? इसलिए कि अल्लाह नेचर को जानते हैं। कि औरत की नजर हर मर्द पर पड़े और ख्वाहिश ऐसा, लेकिन मर्द जो है 9 out of 10 को ख्वाहिश की नजर से देखेगा। तो ये नेचर है, नेचर जब ह्यूमन का ये नेचर है, तो अल्लाह ताला शानहू को पता था कि मेरी बंदी जब घर से बाहर निकलेगी तो महफूज माहौल होगा, इस्लामी हुकूमत होगी, बरतानिया जैसा बहुत सख्त कानून होगा, बहुत हिफाजत अमन चारों तरफ, कोई रेप जीना नहीं करेगा, लेकिन लोग बुरी गंदी नजर तो मेरी बंदी पर डालेंगे, तो मैं मेरी बंदी के चेहरे को ढांप करके निकलने के लिए कहूं ताकि मेरी बंदी को कोई गलत नजर से ना देखे। ये कानून को हम उल्टा समझते हैं कि औरतों में सख्ती, सख्ती नहीं, प्यार है औरतों के ऊपर, प्यार प्यार है औरतों के ऊपर। पैसों को कहां रखते हैं आप? प्लास्टिक के फूल जो होते हैं वो बिल्कुल सामने रखते हैं, और पाउंड और नोटें वो अंदर बेडरूम में, और बेडरूम में भी वार्डरोब में, और वार्डरोब में भी बराबर लॉक लगा करके, है कि नहीं? तो आप ये कहेंगे कि पैसों पे जुल्म हो रहा है और ये प्लास्टिक के फूलों के साथ इनको बहुत मोहब्बत है, बेइंसाफी हो रही है। सब कहेंगे कि इनके दिल में ये फूलों की उतनी वक्त नहीं है जितनी कि पैसों की वक्त है। तो अल्लाह ताला शानहू की नजर में भी औरतों की एक वक्त है, उस वक्त की वजह से उनको कहा कि अपने आप को अंदर रखो घरों में। जीना तो बहुत दूर की बात, मेरी बंदी को कोई गलत नजर से भी ना देखे, है ना भाई? एक बहुत प्रेशस पर्ल होता है, आप जाते हैं म्यूजियम में देखने के लिए, पर्ल को देखने के लिए जाते हैं, तो उस पर जो है वो ग्लास का केसिंग होता है। क्यों ग्लास का केसिंग होता है? कि कोई हाथ ना लगाए इसको, ये बहुत प्रेशस है, इसकी चमक खत्म हो जाएगी कोई हाथ लगाएगा इसको। तो इसीलिए कहा कि मर्द मर्द से मुसाफा कर सकता है, मर्द औरत से नहीं कर सकता, इसलिए कि औरत बहुत प्रेशस है, उसको हाथ नहीं लगना चाहिए। ये ग्लास लगा दिया हमारे और औरतों के दरमियान अल्लाह ने, लेकिन हम ऐसा समझते कि ओ औरत अछूत है, है? औरत जो है अनटचेबल है। ये गलत प्रोपेगेंडा करते हैं, उल्टा ट्विस्ट करके औरतों को बेवकूफ बनाते हैं। तो औरतों को इस्लाम से बगावत पर भी उभारते हैं, और अगर ये सीधी बात करें, सीधी बात जो मैं अभी कर रहा हूं, इस्लाम की सीधी बात अगर करें, तो औरतें बहुत अप्रिशिएट करेगी कि ओह ये मजहब तो औरतों को तहफ्फुज़ देने वाला मजहब है, तो मुझे भी सोचना चाहिए इस मजहब को कबूल करने के बारे में। औरतें कबूल करेगी, और जो मुसलमान है वो भी, ये सारे मुसलमान जो फासिक मुसलमान है जिनको औरतों को झांकने का बहुत शौक है, औरतों को छेड़छाड़ करने का बहुत शौक है, वो भी इन मसाइल को अगर बयान करने जाए तो उनका तो मजा ही खत्म हो जाएगा। पूरी दुनिया जो है वो औरतों के मजे पर ही तो चल रही है, उसी के लिए मर मिट रहे हैं सब। तो ये हिफाजत, औरतों को खुश होना चाहिए कि हमारे अल्लाह को हमसे इतनी मोहब्बत है, अल्लाह को बहुत मोहब्बत औरतों से, बहुत मोहब्बत अल्लाह को, इसीलिए अल्लाह ने दीन भी उनके लिए आसान किया है, दीन को आसान किया है। अल्लाह ताला शानहु भाई हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अल जन्नत तहत अकदामिल उम्महात, जन्नत जो है वो जन्नत मां के कदमों के नीचे। फातिमा से कितना प्यार होता था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर से तशरीफ लाते थे, सीधे अल्लाह के घर में जाते थे, और अल्लाह के घर में जाने के बाद फातिमा के घर में जाती थी, और फातिमा के घर में जाने के बाद अपने घर में जाती थी। ये मकाम है, ये बेटी का कितना ऊंचा मकाम, बेटी का मकाम, बहन का मकाम, आई बात समझ में? हाँ, औरतें जो है बहुत आजादी के साथ रही है, आजादी, और आज भी आजादी के साथ रह सकती है, इस्लाम ने बहुत फ्रीडम दिया है औरतों को, बस ये जो कवानीन है उनकी हिफाजत के लिए। अरे भाई समझ में आ रही है बात? अल्लाह ताला शानहु हमें तौफीक अता फरमावे, अल्लाह हमें तौफीक अता फरमावे, अल्लाह हमें तौफीक अता फरमावे। तो बस भाई ये बूढ़ों का ख्याल मत रखो, औरतें नहीं आनी चाहिए। एक औरतों की अभी नाबालिग है, औरत नाबालिग है, लड़की नाबालिग है, लेकिन उम्र उतनी हो जाती है कभी कभी, बाजों का जिस्म जल्दी उभर जाता है, उनके चेहरे पर खूबसूरती आ जाती है, नाबालिग है तो नाबालिग है, तो उसे बहुत बेहतरीन कपड़े पहनाते हैं, ऐसे कपड़े इसलिए कि नाबालिग है तो ये शॉर्ट स्लीव्स हो, ये गर्दन भी खुली है कि नाबालिग है भाई, नाबालिग है। तो सामने आदमी कौन आ रहा है उसको भी तो देखिए, वो कोई नबी है, वो कोई सहाबी है, वो कोई वली है, जो सामने आया हुआ है उसको भी तो देखिए। जो शहवत का भूखा होगा, भूखे आदमी जिसका पेट भरा हुआ है उसके सामने आप बिरयानी भी रख दो तो वो तवज्जो नहीं करेगा, लेकिन भूखे आदमी के सामने अगर चने भी रख दो तो वो बार बार उसको तकता रहेगा। ऐसा नहीं समझने की छोटी है ये, छोटी लड़कियों को भी शहवत के भूखे लोग जो जो शैतान बन जाते हैं वो गलत नजर से देखते रहते हैं, हाथ लगाते हैं तो गलत नजर से हाथ लगाते हैं। इसलिए अजनबी लोग आए, बच्ची समझदार हो गई हो, है 6-7 साल की, 5 साल की, समझदार हो, सियानी हो, तो कहो कि बेटा तुम उधर चली जाओ, अभी यहां भाई आ रहे हैं, अभी यहां चचा आ रहे हैं, मामू आ रहे हैं, तुम जाओ अम्मी के पास चली जाओ। उसकी हिफाजत है इसमें, बच्चों की हिफाजत है। और अगर लाने की जरूरत पेश आ जाए, कल हमारे यहां हमारे हाजी फारूक साहिब रहमतुल्लाह अलैह के साहिबजादे भाईजान आए हुए थे, तो जाहिर है कि अहमतुल्लाह को लाएंगे, मुलाकात कराएंगे, बुजुर्गों की नजर पड़े, दुआएं मिले, तो मॉडेस्ट कपड़े पहनाओ उनको, उनको हिजाब पहनाओ और फिर ले आओ, ताकि किसी की गलत नजर न पड़े। वहां और लोग भी तो होते हैं, और बच्ची को भी यह एहसास हो कि पराए मर्दों में जब हम जाते हैं तो हमें इस तरह कपड़े पहन के जाना पड़ता है, बचपन से एक माहौल बने। अल्लाह ताला शानो हमें मदद, हमारी भाई शरीयत को सीखो और अमल करो। मैं हजरत उलमाए किराम की खिदमत में भी गुजारिश करता हूं, एक कल्चर रहा होगा हमारे घर में पुराना कि हम औरतों से पर्दा नहीं करते, नहीं करो, अब करो, अब तक गलती होती रही तो अब करो, तौबा कर लो इससे। ऐसी शादियों में हम जाते रहे हॉलों में जहां जहां इख्तलात है मर्द औरत का, फिर भी चले गए, जहां वीडियो फिल्मिंग हो रही है वहां भी चले गए, म्यूजिक है वहां भी, कि हम एक कोने में बैठ करके खाना खाकर निकल जाएंगे। मुफ्तियों से पूछो, पहले से अगर मालूम हो जाए कि मैं जहां जा रहा हूं वहां अल्लाह की नाफरमानी होगी तो जाना जायज नहीं है, चाहे भाई के यहां शादी हो, चाहे मामू के यहां शादी हो, किसी के यहां भी, अगर पहले से पता हो कि मैं जिस जगह पर शादी में जा रहा हूं, और मैं हमेशा कहा करता हूं कि शादी के मामले में अहले इल्म जिनका ताल्लुक पढ़ने पढ़ाने का है और दावत तबलीग के साथ ही, इनका सबसे बड़ा कसूर, इनका सबसे बड़ा कसूर शादियों के मामले में, इसलिए अपने घर में एहतियात करते हैं, मगर रिश्तेदारों में से जिस किसी के यहां अल्लाह की नाफरमानी वाली शादी होती है वो वहां पहुंच जाते हैं, क्या काम आएगा हमारा इल्म, क्या काम आएगी हमारी तबलीग। हमें एग्जाम्पल बनना चाहिए, दावत तबलीग के साथ ही वो दीनदार समझे जाते हैं, ओलमा हुफाज अहले इल्म समझे जाते हैं। तो ऐसी शादियों में एक भी तबलीगी साथी नहीं होना चाहिए, ऐसी शादियों में एक भी इल्म वाला नहीं होना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि हम इस्लाम के खिलाफ, दीन के खिलाफ काम कर रहे हैं और ये लोग नहीं आएंगे। पहले से पता हो कि यहां मुनकर काम होगा, नाजायज काम होगा, तो जाना जायज नहीं है, गुनहगार होते हैं ऐसे लोग। लेकिन हमें अल्लाह की नाफरमानी के बारे में बिल्कुल दिल नहीं दुखता, हमारे बाप को कोई कुछ कह दे तो हमें बहुत दुख होता है, लेकिन ना वो नाराज हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, सबको सबको जोड़ने की फिक्र के सब खुश रहे हमसे, चाहे अल्लाह नाराज होता रहे हमसे। ये दर्द की बातें हैं मेरे भाइयों, और इसी वजह से उम्मत की फलाह और बहबूदी नहीं हो रही है, इसी वजह से, इसलिए कि अल्लाह की नाफरमानी के मामले में असल यह है कि उम्मत अल्लाह की नाफरमानी से चौंके, चौंकी कि अल्लाह की नाफरमानी, अल्लाह की नाफरमानी, अल्लाह की नाफरमानी। एक सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हु से जिना हो जाता है, और सहाबा गुनाह करते नहीं थे, उनसे करवाए जाते थे, ताकि वो जिना अगर उनसे ऐसा बड़ा गुनाह हो जाए तो उसके बाद जो आगे अहकाम है सहाबा उस पर अमल करके दिखाएं कि देखो हम कर रहे हैं तो तुम्हें भी करना पड़ेगा, वरना बहुत बड़ी सजा, जिना की बहुत बड़ी सजा, संसार पत्थर से मारते हैं। तो अगर उस जमाने में कोई ऐसा वाकया पेश ना आया हुआ होता तो हम क्या कहते, हम ये कहते कि कानून बनाना बहुत आसान है, कानून को अप्लाई करना बहुत मुश्किल है, आप भी तो करके दिखाते। इसलिए इक्का दुक्का ऐसा वाकया पेश आ जाता था, अल्लाह करवाते थे तकवीनी तौर पर, गुनाह हो गया पूरी जिंदगी में एक गुनाह, एक गुनाह। और गुनाह का हुक्म यह है कि अगर गुनाह हो जाए और खामोश रहे, किसी को पता ना चले, अल्लाह से तौबा कर ले तो माफ हो जाता है। सहाबी हमसे ज्यादा जानते थे, लेकिन फिक्र इतनी थी, फिक्र इतनी थी कि मेरे आखिरत में क्या होगा, आखिरत में क्या होगा, आखिरत में क्या होगा, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते कि इन्नल अखिर कद जनत, इन्नल अखिर कद जनत। अखिर, अखिर का क्या माना? अखिर का माना पीछे रहने वाला। तो अपने आप को कहा कि अखिर, अखिर ने जिना कर लिया है, ये अल्फाज इस्तेमाल किए अपने बारे में कि अखिर, अखिर ने जिना कर लिया है। अखिर का क्या माना? पीछे रहने वाला। इसका मतलब यह है कि अब मैं अखिर हो गया, इसलिए कि मुझसे गुना हो गया तो आखिरत की कामयाबी के एतबार से मैं पीछे रह गया, खुद को लकब दे दिया अखिर का, इन्नल अखिर कद जनत। अभी हमारी शरीयत जो है उसकी पूरी कोशिश होती है कि किसी पर यह हद न लगे, इसलिए कि हद लगती है तो हाथ कट जाता है, हद लगती है तो कोड़े लगते हैं, हद लगती है तो संसार होता है। तो शरीयत की पूरी कोशिश ये होती है, इसीलिए उसके लिए चार गवाह चाहिए और बहुत मुश्किल है ये काम। तो एक शख्स जब आकर के कहता है कि मैंने जिना कर लिया है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह बैठे हुए थे तो क्या मुझसे जिना हो गया है, तो क्या किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? कुछ नहीं बोले और इधर देखा, इधर कुछ जवाब नहीं दिया, इधर देखा, चेहरा फेर दिया। चेहरा फेर दिया का मतलब ये कि इस बात को रहने दीजिए, छोड़ दीजिए इस बात को। तो चल करके इधर आया और कहा कि इन्नल अखिर कद जनत, और दूसरी रिवायत में कि तहिर नहीं या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुनाह करके मैं गंदा हो गया, मुझे पाक कर लीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर इधर बैठ गए, इधर मुंह फेर लिया, बार बार ये चेहरा फेर रहे हैं और वो इधर से इधर, इधर से। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये फिक्र होती थी, फिक्र होती थी। एक औरत से ये काम हो गया, आकर के कहा कि मुझसे गुनाह हो गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इधर उधर चेहरा फेरा। सहाबी से कहा कि शायद तूने हाथ लगा दिया होगा और उसको तूने जिना समझ लिया होगा, कि ना, हाथ को, हाथ लगाने को जिना नहीं कह रहा हूं, जिना करके आया हूं। देखो कितना चांस दे रहे हैं। तो इधर एक तो पता ये चल रहा है कि शरीयत ताक में नहीं रहती कि कोई जिना करता हुआ पकड़ा जाए ताकि उसे संसार किया जाए। शरीयत की कोशिश ये होती है कि बच जावे लोग, माफी तौबा कर लें। और उनको कितना जज्बा, कितना जज्बा। तो औरत आई और हमल भी था, इकरार भी कर रही है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बात पक्की हो गई तो कहा कि अभी तो तुम चली जाओ, बच्चा पैदा हो जाए फिर देखेंगे। 7-8 महीने निकल गए, लेकिन फिर भी वो जो फिक्र थी आखिरत की वो इमोशनल नहीं थी, जज्बात में नहीं थी। 7-8 महीने के बाद भी उसे फिक्र थी, फिर आई अकीम अलैहिल हद, मेरे ऊपर हद को आप लागू कीजिए, सजा मुझे दे दीजिए ताकि आखिरत की पकड़ से बच जाऊं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम चली जाओ इसलिए कि तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारा मोहताज है, वो तुम्हारा दूध पीता है। फिर चली गई, दूध पिलाती रही पिलाती रही, और फिर जब बच्चा खाने पीने के काबिल हुआ, इंडिपेंडेंट हो गया, तो लेकर के, और हदीस शरीफ में यह है कि वो इस हालत में लेकर के आई कि उस बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा था, ताकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्मीनान हो जाए कि इस बच्चे को अब मां की जरूरत नहीं रही है। कितनी फिक्र आखिरत का। इसलिए मेरे भाइयों, ये जो हम थोड़ा बहुत पढ़ा लेते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, इमामत करा लेते हैं, मिंबर पे बैठ के बयान कर लेते हैं, हम तबलीग में 40 दिन लगा लेते हैं, 4 महीने लगा लेते हैं, गश्त कर लेते हैं, एतिकाफ में बैठ जाते हैं, खानकाह में जाकर शेख की मजलिस में बैठ जाते हैं, ये जो जाहिर में हमें अच्छे अच्छे आमाल नजर आते हैं, यकीनन अच्छे हैं, लेकिन ये आमाल हमारी इन बुराइयों की वजह से नापाक हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं ये आमाल। اور قیامت کے دن یہ اعمال جن کو ہم اچھے اچھے اعمال سمجھتے ہیں وہ مقدار میں بہت کم ہوں گے اور ہمارے گناہ بہت زیادہ ہوں گے. ہمیں نفرت ہوتی ہے لوگوں سے مگر ہم منافقت کا نفاق کا برتاؤ اختیار کرتے ہیں, سامنے سے اچھی طرح پیش آتے ہیں, جب وہ چلا جاتا ہے تو پھر اس کی غیبت شروع ہو جاتی ہے, لوگوں کا ہم ذہن اس کے خلاف بنانا شروع کر دیتے ہیں, ہم تہمتیں لگاتے ہیں, غیبتیں کرتے ہیں, مالی معاملات میں صفائی نہیں, حلال حرام کی ہمیں تمیز نہیں, ہم مفتیوں سے علماء سے پوچھتے نہیں کہ یہ مال کیسا ہے, شبہ ہو جاتا ہے تو بھی ایسا کہ اب چل جائے گا کوئی حرج نہیں. ہمارے گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں, دیندار لوگوں کے گھروں میں کیسی شادیاں ہوتی ہیں, کتنے ناجائز کام ہم کرتے ہیں اور سب پتا ہے کہ بچی یہ کر رہی ہے, بچے یہ کر رہے ہیں, عورتیں یہ کر رہی ہیں, لیکن جیسے کچھ جانتے ہی نہیں ہیں, جانتے ہی نہیں ہیں. کیوں کیوں بھائی؟ کہ ہماری خوشی میں بھنگ نہ پڑ جائے, ہماری خوشی برباد نہ ہو جائے. میرے بھائی, اس دنیا کی خوشی کو باقی رکھنے کے لیے تیری آخرت کی خوشی کو تو برباد کر رہا ہے, یہ تو سوچ. یہ عورتیں اور یہ بچے اور یہ جن کو تو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے, یہ قیامت کے دن تیرا گریبان پکڑ لیں گے, تیرا گریبان. کہ تبلیغ میں بہت جاتا تھا اور پوری امت کی فکر کر کے لیکن گھر میں کچھ نہیں کرتا تھا. یہ ہمارے میاں خانقاہ لے کر کے بیٹھتے تھے مگر گھر میں کچھ نہیں کہتے تھے. یہ ہمارے میاں ممبر پہ بیٹھ کے مسلیوں کو تو بہت جھنجھوڑتے تھے مگر ہمیں گھر میں کچھ نہیں کہتے تھے. اس لیے گناہوں سے بچو. اس لیے میں بھی اس کا بہت محتاج ہوں, اللہ مجھے بھی گناہوں سے بچا لے, میری بھی مغفرت فرمائے, آپ سب دوستوں کو بھی. میں بہت درد دل سے یہ بات, میں اور صرف یہاں بیٹھ کر نہیں, دنیا میں جہاں کہیں جاتا ہوں یہی بات کرتا ہوں, جہاں کہیں جاتا ہوں مین ٹاپک ہی یہ ہوتی ہے کہ بس گناہوں کو چھوڑو, گناہوں کو چھوڑو, گناہوں کو چھوڑو, گناہوں کو چھوڑو, ورنہ لینے کے بجائے دینے نہ پڑ جائے ہمیں قیامت کا. یہ شیطان ہمیں دھوکے میں رکھتا ہے کہ بہت کچھ تو کر رہا ہے, بہت کچھ کر رہا ہے, بہت کر رہا ہے, بہت کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ شانہ توفیق دے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بوڑھا آدمی جو ہے, بوڑھا آدمی زنا کرنے کی صلاحیت تو ختم ہو جاتی ہے لیکن بد نظری کی صلاحیت اس کی موت تک ختم نہیں ہوتی, موت تک اس میں بد نظری کرنے کی صلاحیت رہتی ہے. اور یہ پتا کب چلے گا؟ جب ہم بوڑھے ہوں گے. اصل میں ہم بوڑھے نہیں, اس لیے ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ صلاحیت ابھی ہی رہتی ہوگی, بعد میں ختم ہو جاتی ہوگی. بوڑھوں سے پوچھئے, بوڑھوں سے پوچھئے کہ آپ کو بھی حفاظت کرنی پڑتی ہے, کنٹرول کرنا پڑتا ہے. وہ کہیں گے کہ ہاں ہمیں بھی کنٹرول کرنا پڑتا ہے, ہمیں بھی نگاہیں نیچے رکھنی پڑتی ہے. اللہ تعالی شانہ ہماری مدد فرمائے. اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ بڑی عمر کے مردوں سے بھی دور رہے اور اپنی نگاہیں نیچے رکھے. اور بھائی گھروں میں پردہ لاؤ, گھروں میں پردہ لاؤ. دیکھو کسی دن تو لانا چاہیے. کتنی مدت ہماری گزر گئی, دیندار ہیں مگر گھر میں پردہ نہیں ہے, بھابھی کے ساتھ آمنے سامنے کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں. کتنی بری بات. بھائی بات ہو سکتی ہے, پردے کے پیچھے سے بات کرو, دروازے کے پیچھے سے بات کرو. اللہ تعالی شانو ہمیں توفیق دے, اللہ ہمیں توفیق. عورت جو ہے, عورت وہ حقیر نہیں ہے, عورت تو اتنی قیمتی ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ایک عورت کو, حضرت عائشہ کو سلام کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ عائشہ کو میری طرف سے سلام کہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ عائشہ, یہ جبریل آئے ہوئے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ عائشہ کو سلام کہو. یہ عورت تو اتنی قیمتی ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل آئے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ سلام بھیج رہا ہے, اللہ سلام بھیج رہا ہے خدیجہ پر. تو عورت کوئی حقیر تھوڑی ہے, بہت اونچی ہے عورت. ہر شخص جو ہے وہ فراخ دلی سے, دل کی وسعت سے خوش ہو کر کے باتوں کو سنے, اور باتوں کو سن کر ہم اسی لیے یہاں بیٹھتے ہیں ہر ہفتے تاکہ یہ مذاکرے ہوں, اور ان مذاکروں کے نتیجے میں ہم لوگ دیکھیں ہمارا हमारा अपना ऑपरेशन हो, हमारा अपना एक्सरे हो, हमें पता चले। तो ऐसी बातें जहां होंगी वहां जाएंगे तो पता चलेगा ना कि मेरे अंदर क्या अच्छा है। इसीलिए इस किस्म की मजलिसों में बैठने के लिए कहा जाता है, ताकि हमें एहसास हो, हमें पता चले कि हम कहाँ है कहाँ नहीं है। और आज जो है एक दिलखराश वाकया न्यूजीलैंड में हुआ है, आप सब हजरात वाकिफ ही हैं कि वहां जुमा की नमाज में मस्जिदों में कुछ मुसलमानों से नफरत रखने वाले लोग घुस गए और तकरीबन 30-40 आदमी शहीद हो गए हैं। हो सकता है कि उससे भी ज्यादा तादाद हो। हमारे मुफ्ती इस्माइल साहिब के रिश्तेदार भी वहां न्यूजीलैंड में रहते हैं, तो उनके खानदान का भी एक फर्द जो है वो 35 साल की उम्र का था, वो भी आज शहीद हो गया है। वो तो अल्लाह ताला शानहू उन सबको शहादत के बहुत आला मरातिब पर फाइज फरमाए और उनके खानदानों को अल्लाह ताला सब्र और हिम्मत दे और पूरी बस्ती को, इसलिए कि एक ही बस्ती में 40-50 आदमी अगर शहीद हो जाएं, चला 40-50 जनाजे उठते और बाकी सुना है कि बहुत सारे अभी क्रिटिकल है हॉस्पिटल में, उसमें से कितने बचते हैं वो देखना चाहिए। तो जाने वाले तो खुश नसीब है कि अल्लाह ताला शान उन्होंने उनको शहादत अता फरमाई है। मस्जिद में जुमा की नमाज से पहले बैठे हुए थे नमाज के लिए या पढ़ ली थी, जो भी हो, और अल्लाह के घर में उनको शहीद किया गया, तो उनके लिए तो, लेकिन जाहिर है कि उम्मत के लिए भी एक ट्रेजेडी है बहुत बड़ी, और खास तौर पे उस मुल्क वालों के लिए, और उसमें भी खास तौर पे उस बस्ती वालों के लिए और उनके रिश्तेदारों के लिए। हो सकता है कि किसी घर में दो दो तीन तीन आदमी भी शहीद हुए हो और छोटे छोटे बच्चे और ट्रॉमा, और तो हमें खूब दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह उन लोगों के दर्जों को बुलंद करे, मगफिरत फरमाए, और उनके पीछे जो लोग रह गए हैं अल्लाह ताला शान हो उन्हें बहुत ज्यादा सब्र दे, बहुत ज्यादा अजर दे, बहुत ज्यादा हिम्मत दे, अल्लाह ताला शान हो उनकी हिफाजत फरमाए, बेवाओं की हिफाजत फरमाए, बच्चों की हिफाजत फरमाए। और ऐसे मौके पर जो है खौफ और हरास का माहौल भी पैदा होता है पूरी दुनिया में, कि इस किस्म के तासुब मुतासिब लोग नेशनलिस्ट लोग हर जगह रहते हैं, हर कौम में ऐसे लोग होते हैं, हर जगह ऐसे होते हैं, तो एक किस्म का खौफ का माहौल हो जाता है। इसलिए कि ऐसे वाकयात जो है वो दूसरों के लिए भी एक नमूना होते हैं कि हमें भी ऐसा करना चाहिए, मैं भी ऐसा करके हीरो बन जाऊं। तो इस वजह से तो हमारा कुरान और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जो है उसने कुछ भी नहीं छोड़ा है। अल्लाह ताला शानहु कुरान में इरशाद फरमाते हैं कि वह इन तस्बिरु व तत्तकु ला यज़ुर्रुकुम कैदुहुम शैया, यानी कितनी कुव्वत के साथ अल्लाह ताला शानहु इरशाद इलाज बतलाया हमें, वह इन तस्बिरु व तत्तकु, अपनी जिंदगी में अगर तुम सब्र ले आओगे, सब्र के मुसीबत पर भी सब्र, मुसीबत पर सब्र और सिराते मुस्तकीम पर सब्र, यानी जमना, सब्र का माना है जमना है। जब कोई मुसीबत आती है तो आदमी के जहन में ऐसा होता है कि मैं ऐसा कर डालू, ऐसा कर डालू, ऐसा कर डालू, ऐसा कर डालू, तो वो अपने आप को रोक लेता है, ये है सब्र। बीमारी में दर्द हो रहा है तो दिल करता है कि मैं बहुत चीखू, मैं चिल्लाऊ, मैं खुदकुशी कर लू, घर से बाहर भाग जाऊं, जब्त कर लेता, यह है सब्र। इसी तरह जो है जब अल्लाह के किसी हुक्म पर अमल करने का मौका आता है तो उस वक्त जो है शैतान और नफ्स इधर उधर ले जाना चाहते हैं तो अपने आप को पकड़ के रखता है कि ना, फजर पढ़नी ही पड़ेगी, जोहर अदा करनी ही पड़ेगी, असर पढ़नी ही पड़ेगी, मगरिब पढ़नी ही पड़ेगी, मामूलात पूरे करने ही पड़ेंगे, चिल्ला लगाना ही पड़ेगा, सब्र। और वतत तक अल्लाह की नाफरमानी से बचना, तो मुसीबत पर सब्र करे और नेक आमाल पर जमे और बुरे आमाल से अपने आप को बचाए, बस ये काम करना है, ये इलाज है कुरान में। वही इन तस्वीरू वतत तकू, अगर तुम सब्र करोगे, सब्र करोगे यानी मुसीबत पर सब्र करोगे, हिम्मत नहीं हारोगे और सिराते मुस्तकीम पर जमोगे और गुनाहों से बचोगे, तो अल्लाह का वादा क्या है, ला यज़ुर्रुकुम कैदुहुम शैआ, ला यज़ुर्रुकुम कैदुहुम शैआ, उनकी प्लानिंग उनका मकर तुमको जरर नहीं पहुंचाएगा। क्यों? इसलिए कि दुनिया में अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता, और वो जो कुछ भी कर रहे हैं चारों तरफ से अल्लाह उनको घेरे हुए हैं, चारों तरफ से अल्लाह उनको घेरे हुए हैं। ये जो ऐसे दुश्मन होते हैं वो किसी से नफरत करने वाले ऐसे चारों तरफ से घेरे हुए हैं, फिर अल्लाह चारों तरफ से घेरा हुआ है तो फिर ऐसे निकल कैसे पाते हैं, हम तक कैसे पहुंच जाते हैं? इसलिए पहुंच जाते हैं कि अल्लाह ने जो हमें करने के लिए कहा वो हम करते नहीं। वल्लाहु बिमा यअमलूना मुहीत, अल्लाह ताला उनकी हरकतों को घेरे हुए हैं चारों तरफ से, अल्लाह घेरे हुए हैं उन कामों को जिन्हें वो कर रहे हैं, वो साजिश करते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो अल्लाह घेरे हुए हैं चारों तरफ से। और अल्लाह जब उनको चारों तरफ से घेरे हुए हैं तो वो नुकसान अल्लाह बाहर निकलने नहीं देगा। लेकिन कब अल्लाह बाहर निकलने नहीं देगा? जब हमारे पास सब्र हो और तक्वा हो। एक काम तो हमें यह करना है कि मुसीबतों पे सब्र करना है, दूसरा काम हमें यह करना है कि जो काम करने के हैं दीन के उनके करने में मजबूत, और जिनसे बचना है उसमें भी मजबूत। सिर्फ हम करने के कामों को करें और बचने के कामों से तो फिर गड़बड़। ये फोर्ट्रेस है हमारे लिए, ये फोर्ट्रेस है। पेशेंस, डूज एंड डोंट्स, पेशेंस, डूज एंड डोंट्स, ये तीन काम अगर हमने कर लिए तो अल्लाह उनको घेरे में लिए हुए है, अल्लाह इनको हरकत नहीं करने देगा। वल्लाहु बिमा यअमलूना मुहीत। तो वइन तस्बिरु वतत्तकु ला यज़ुर्रुकुम कैदुहुम शैया, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, करना सिर्फ इतना है कि अपना ताल्लुक अल्लाह से जोड़ने की जरूरत है। मुसीबतों पे सब्र करें, जो काम करने के हैं उनको करें, जिन कामों से बचना है उन कामों से बचें। और जाहिर है कि क्या करना है, किन कामों से बचना है, उसके लिए उलमा के साथ उठना बैठना पड़ेगा, उलमा से पूछना पड़ेगा, उलमा की किताबें पढ़नी पड़ेगी। मालूम ही नहीं है तो कैसे करेगा, मालूम ही नहीं तो कैसे करेगा। एक शख्स को मालूम ही नहीं है कि किसी के मरने के बाद मीरास तकसीम करनी है, तो कितने दीनदार ऐसे हैं जो मीरास तकसीम नहीं करते, इनहेरिटेंस को तकसीम नहीं करते। कितने दीनदार ऐसे हैं कि उनको मसाइल मालूम नहीं तो विल बनाकर जाते हैं, लेकिन वो गैर इस्लामी विल होती है, तो गैर इस्लामी विल करके जाते हैं, तो गुनाह करके जाते हैं। पीछे जो रह जाते हैं वो भी क्या है भाई, मसाइल से वाकिफ नहीं, इसलिए वो भी क्या करते हैं जी, वो भी उसके मुताबिक अमल करते हैं कि नहीं वो तो ये लिख करके गए हैं, क्योंकि मुफ्ती साहब ऐसा कह रहे हैं ना। हाँ वो होगा, मुफ्ती साहब कहते होंगे, लेकिन मरने वाला खुद ये कह करके गया है। लेकिन मरने वाला हर बात कहे वो करने की थोड़ी होती है। हम लोगों ने जब बिल्कुल शुरू में 186 मेलबर्न रोड लिया, और उस वक्त बड़ी कसम पुरसी के आलम में हम लोग गुजर रहे थे, पैसे की जरूरत थी, तो उस वक्त तो 100 पाउंड भी कहीं से आ जाता था तो बड़ी रकम थी। तो एक साहिब मेरे पास आए, मुझे पहचानने वाले थे, और उन्होंने मुझे कहा कि एक बीबी का इंतकाल हो गया है, और रिसीवर पर वो तुम्हारे बयान सुनती रहती थी, मैं उसका पड़ोसी हूं और उसकी औलाद है, मगर औलाद ने ख्याल नहीं रखा, लड़के हैं मगर ख्याल नहीं रखा। तो जब वो बीमार हुई तो मुझे ये कह करके गई कि ये मौली साहब का जो काम है दीन का, मेरा जो कुछ भी है वो सब उनको दे देना। कुछ जेवरात थे, कुछ थोड़ा कैश था, जो कुछ है वो उनको दे देना। तो हमारे लिए तो उस वक्त 100 पाउंड भी बहुत बड़ी रकम थी। तो बहरहाल वो मुझे ये तो मुझे नहीं कहा, मुझे तो इतना कहा कि तुमको बहुत चाहती थी, और उसने ये कहा था कि भाई नमाज़े जनाज़ा उससे पढ़वा लेना। मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा, ये तो शहादत है, किसी की नमाज जनाजे में शरीक होना है, ऐसा जरूरी थोड़ा है कि पढ़ानी है तो ही जाएं, जाना चाहिए, जब भी जा सके तो जाना चाहिए नमाज जनाजा के लिए, उससे आखिरत की याद भी। आजकल हम लोगों का मिजाज ये हो गया कि पहचान हो तो जाते हैं, पहचान न हो तो नहीं जाते। इसका मतलब ये है कि मुंह दिखाने के लिए जाते हैं। अरे भाई, अल्लाह के किसी बंदे को जन्नत में पहुंचाने के लिए जाओ ना, ये हमारे दावत तबलीग के साथ ही घर घर क्यों जाते हैं? बर्फ गिर रही है, बारिश गिर रही है, फिर भी घर घर क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि हम किसी के घर जाएंगे, उसके जहन में बात आ जाएगी तो जन्नत में जाएगा। तो यहां कब्रस्तान में भी इस नीयत से जाओ कि मैं फारिग हूं, मेरे पास टाइम भी है, एक बंदे का इंतकाल हो गया है, बंदी का इंतकाल हो गया, चलो चले जाते हैं, मैं पढ़ूंगा अल्लाहुम्मा इग़फिर लि हय्यना, शायद अल्लाह मग़फिरत फरमा दे। और अपने होते हैं वहां मग़फिरत के चांसेस कम, इसलिए कि हो सकता है कि हमारी नीयत सिर्फ दिखाने की हो, पराया है तो इखलास के साथ ही जाएंगे, वहां तो कोई तो जाना चाहिए, सवाब भी बहुत मिलता है इसमें। अल्लाह ताला शानहू ने अपने बंदों की मग़फिरत के लिए नमाज जनाजा बनाई, और नमाज जनाजा बना करके हमें कहा कि तुम नमाज जनाजा पढ़ने के लिए आओ, और अल्लाह ताला शानहू अपने गुनहगार बंदों को माफ करके कब्र में उतारना चाहते थे, इसलिए हम लोगों को लालच भी बहुत दी कि अगर कोई नमाज जनाजा पढ़ता है तो उसको जबल उहद से ज्यादा सवाब मिलेगा, उहद पहाड़ से भी ज्यादा सवाब मिलेगा, और अगर वो जनाजे में के बाद दफन में भी शरीक होगा तो दो उहद पहाड़ के बराबर सवाब मिलेगा उसको। ये लालच दी, किस ये लालच अल्लाह हमें क्यों दे रहे हैं? ताकि वो बंदा उसकी मग़फ़िरत हो जाए, वो जो गुनहगार गया है। क्या रहीमी है अल्लाह की। तो जब दफन वफन से फारिग हो गए तो वो उसी दिन या दूसरे दिन या तीसरे दिन मेरे पास आई और कहने लगे कि आपसे जरा बात करनी है। मैंने कहा फरमाए। तो कहने लगे वो औरत जिसका तुमने नमाज जनाजा पढ़ाई थी, जिसका भी इंतकाल हुआ था, वो वसीयत करके गई है, मुझे कहकर के गई है कि मेरा सब कुछ इस्लामिक दवा एकेडमी को दे देना। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा उनके वारिस हैं? तो कहा कि हाँ है। तो मैंने कहा अगर उनके वारिस हैं तो फिर ये इस्लामिक दवा एकेडमी के लिए पूरे माल की वसीयत नहीं कर सकती, सिर्फ 1/3 की कर सकती है, पूरी नहीं। तो वो सब इनके सामने थी सारी बातें। तो कहने लगी कि नहीं, वो तो बहुत ही नाराज थी अपने बच्चों से, इसलिए कि कोई देखने के लिए भी नहीं आता था, तो बहुत उनको तो इससे बहुत तकलीफ हो, अगर उनको पता चले कि हमारे बेटों को भी कुछ इसमें से मिला है तो उनको बहुत तकलीफ होगी। मैंने कहा वो अपनी जगह पर, हमें भी दावा एकेडमी को भी बहुत पैसे की तो जरूरत है, लेकिन हमें शरीयत कहती है तो हम क्या करें? अल्लाह के नबी जो कहते हैं वो हमें करना पड़ता है। भाई बात समझ में आ गई। अल्लाह ताला शानू हमें तौफीक दे तो बस शरीयत जो कहे वो मालूम हो, तो मालूम नहीं होगा तो गलत काम होंगे। और आपको मालूम है कि किसी भी हुकूमत के कानून में न मालूम होना उज्र नहीं है। अगर कोई कहते हैं कि आई डिडंट नो तो उसे कोई छोड़ता नहीं है। मालूम न होना एक दूसरा जुर्म होगा आखिरत में, तो इल्म को हासिल करना भी फर्ज था, क्यों नहीं हासिल किया था? तो इसलिए सीखो, और सीख करके फिर मुसीबतों पे भी सब्र करो। जो काम करने के हैं डूज, उनको बराबर मजबूती से करो, खासतौर पर फराइज और वाजिबात। और जिन कामों से बचना है उनसे बचो, है हराम, मकरूहात तहरीमिया, मकरूहात तंजीहिया। तो अल्लाह का वादा है कि जो इस तरह रहता है, ला यदुर लोकुम कैदुहुम शैया, लोगों की प्लानिंग कुछ नुकसान उसे नहीं पहुंचा सकती, ये वादा है अल्लाह का। अगर कोई इन्फिरादी तौर पर यह काम करेगा तो इन्फिरादी तौर पर उसकी अल्लाह हिफाजत फरमाएंगे, उम्मत इज्तिमाई तौर पर करेगी तो उम्मत। क्यों? इसलिए अल्लाह फरमाते हैं कि ये प्लानिंग करने वाले है कौन? वल्लाहु बिमा यअमलून मुहीत, अल्लाह उनको घेरे में लिए हुए हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। ये उसी वक्त कर सकते जब अल्लाह छूट देता है उनको, और अल्लाह कब उनको छूट देता है? जब हम सब्र नहीं करते, जब डूज पर अमल नहीं करते, डोंट से बचते नहीं। और उनके लिए दुआ खूब करनी चाहिए, ऐसे मौके पर हमारे दिल में उनके लिए दर्द होना चाहिए। ये वाकया जो न्यूजीलैंड में हुआ था, अगर ऐसा ही वाकया दूसरे किसी मजहब वालों के साथ होता कि कोई चर्च में घुस गया और ऐसा हुआ, कोई सिनागोग में घुस गया और ऐसा हुआ, जैसे हुआ है ऐसा अमेरिका में, और अगर कोई मंदिर में घुस जाता तो भी मुसलमान का दिल ऐसा होता है कि उसको यही फीलिंग होनी चाहिए, ओहो ये क्या हो गया, क्या हो गया, इनोसेंट लोगों को कौन ये इतना जालिम आदमी होगा और सख्त दिल आदमी होगा, कसावत कल्ब की इंतहा कि ये यूं क्या करके बिल्कुल इनोसेंट लोगों को इसने यूं कत्ल कर दिए, कौन होगा ये, कौन होगा। तो थोड़ा कंटेम्पलेट करके सदमा महसूस करना चाहिए, फीलिंग महसूस करनी चाहिए, दुआएं करनी चाहिए, तकवा इख्तियार करना चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, जो लोग मारे गए हैं उनके लिए कुछ सदका निकाल करके इसाले सवाब करना चाहिए है भाई, और दुआएं खूब करनी चाहिए, और इसी से इंशाल्लाह हमारी भी हिफाजत होगी। अल्लाह ताला शानहु इस आलम में अमन को आम फरमाए, इख्तिलाफात इंतिशारात रंजिशें शरारतें लड़ाइयां झगड़े कत्लो गारत इन सब चीजों को खत्म फरमाए, और इन सब चीजों के खत्म होने के लिए जिन असबाब की जरूरत है अल्लाह गैब से इंतजाम फरमाए। अल्लाह ताला मरहूमीन की मगफिरत फरमाए, बीमारों को शिफा अता फरमाए। हमारे मौलवी आमिर इस्माइल के वालिद भी काफी बीमार हैं, उनके लिए भी दुआ करो अल्लाह सेहत दे। अल्लाह ताला शानहु उन्हें भी हमें भी अपने अपने वक्त पर सबको हुस्ने खातिमा नसीब करें, और अल्लाह ताला शानहु फजल फरमाए, मदद फरमाए, उम्मत के दिलों को जोड़ दे, उम्मत को एक बना दे, नेक बना दे, हम लोगों को हमारी जिंदगियों का मकसद समझने की तौफीक दे, इल्म की सही समझ अता फरमाए, दीन की सही समझ अता फरमाए। इसी तरह हमें अल्लाह ताला मिलाता रहे और जन्नत में भी अल्लाह हमें साथ रखे। وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقابك وبك منك جل وجهك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم واقية كواقية الوليد اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم اللهم صرف عنا كيدهم وشرهم ومكرهم بما شئت وكيف شئت اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمته.